તારીખ 11/7/1992 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા ઈડરમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 63.
મુમુક્ષુતા પ્રગટ કરવાનું મુખ્ય કારણ તો આત્મહિતની દરકાર છે. પોતાને મનુષ્ય જીવન વ્યતીત થઈ રહ્યું છે, એમાં તો એક સમયને પણ રોકી શકાતો નથી. જે સમયનો પ્રવાહ છે એમાં તો એક સમય પણ રોકી શકાતો નથી. અને ફરી ફરીને આવી તક મળતી નથી, એટલે એમાં આત્મહિત કરવાની જેટલી તાલાવેલી લાગે સમજપૂર્વક, અને આત્મહિતની જેટલી દરકાર જાગે તો એને અનુસરીને જ બધું એ પોતાનું જીવન ગોઠવે આપોઆપ. પ્રવૃત્તિ ઓછી કરવી, પ્રવૃત્તિ ઘટાડવી, નિવૃત્તિ વધારવી, સત્સમાગમ કરવો, સત્સમાગમ માટે નિવૃત્તિ લેવી. જેમ કે શ્રીમદજીએ 10 વચનો લખ્યા છે 105 નંબરના પત્રમાં. એમાં પહેલું એ લીધું છે, સત્પુરુષના ચરણ ન ઈચ્છુક. એટલે કે કોઈ સત્પુરુષ હોય તો એના ચરણમાં નિવાસ કરવો. પછી સદૈવ સૂક્ષ્મ બોધનો અભિલાષી, આત્મ સ્વરૂપનો સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ બોધ પ્રાપ્ત કરવા માટે એની આતુરતા અને અભિલાષા દે. દસ લિયા હે, અપના સમય કહીં ભી ખરાબ ન હો, બિગડે નહીં. ફાલતુ અપ્રયોજનભૂત વિષય મેં ઉસકે લીએ ભી જિસકો બહુ સાવધાની જાગૃતિ ઉપયોગ રહે. એસે અનેક પ્રકાર છે, સબકા કેન્દ્ર સ્થાન વો હૈ કે મુજે આત્મહિત શીઘ્રતા સે શીઘ્ર કર લેના હૈ. ઇસલિયે કે આયુ કા ભી કોઈ ભરોસા તો કિસી કા નહીં રહેતા, કિસી ભી ઉમર મેં આયુ ખતમ હોતા હૈ. ઇસલિયે જો ભી તીવ્રતા રહેતી હૈ ઉસ વિષય મેં મુમુક્ષુતા પ્રગટ કરતી હૈ. તો જ્યાદા સે જ્યાદા કાલ હૈ 6 મહિના તો. પ્રોબ્લેમ તો એ હૈ કે હમારી જીતની સાવધાની હમારે સંસાર કી પ્રવૃત્તિ મેં હૈ, ઉતની સાવધાની હમારે આત્મહિત કે વિષય મેં નહીં હૈ. બસ એ ખાસ કારણ તો એ હૈ. ખાસ કારણ તો વહી હૈ. નહીં, હર હાલત મેં કર સકતે હૈ. નિમિત્ત કા કોઈ તકલીફ નહીં પડતી, નિમિત્ત કી કોઈ તકલીફ નહીં પડતી. સુગાનીજી કો તો આજીવિકા કા ભી યોગ નહીં થા, સમસ્યા થી. उसी हालत में ज्ञान प्राप्ति किया है और आत्महित के लिए उतने बेचैन थे कि इसके पीछे हर प्रकार की प्रवृत्ति में सावधानी कम होगी तो कोई आरोप भी कर सकता है कि उसकी सावधानी धंधा में लक्ष्य नहीं था, इसलिए उसका धंधा फेल हो गया, ऐसा भी कह सकते हैं, दुकान बंद करना पड़ा, बंद करके कलकत्ता जाना पड़ा, तो धंधा में ध्यान नहीं दिया, ऐसा आरोप भी कोई कर सकते हैं। लेकिन मानो के ऐसा भी हो, मान लो कि ऐसा भी हुआ हो, तो उसको कितना नुकसान हुआ ये आप बता दो मुझे, है? कितना फायदा हुआ है? फायदा हो रहा तो कितना हुआ उसको ये बताओ, है? अनंत संसार का नाश कर दिया। तो इस आयु के कुछ भाग में अगर निर्धनता से व्यतीत करना हुआ तो क्या हो गया उसमें? कोई मर जाते थोड़े, क्या होता है? हाँ, आचार्य महाराज तो समय सार के 23 कथम भी मृतवा कौतहली सन, मरी मर करके भी तू कुतूहल कर, ऐसा कहते हैं। लेकिन उतना तो होता नहीं। तो एक तो बात यह है कि हमारी जो संसार के विषय में जो सावधानी है उसमें हमारी आत्मिक शक्ति इतनी हम खर्च करते हैं, खर कर देते हैं कि फिर हमारा आत्महित में खर्च करने के लिए हमारे पास कुछ बचता नहीं। फिर कुछ कर लेते हैं, स्वाध्याय वगैरह तो ऊपर ऊपर से हो जाता है, शक्ति तो सब वहां खर्च कर दी हमने। गिनती तो फिर करेंगे, क्या करेगा वो, तो उसको तो फिर कोई आडंबर दिखावा तो करना ही है। ऐसी बात है। तो ऐसा है कि खिंचाव कहाँ ज्यादा है वो तो अवलोकन से ही मालूम पड़ सकता है, अपना परिणाम का बिना अवलोकन तो ये मालूम नहीं पड़ेगा कि हमारा परिणाम कहाँ लगता है, कितना खिंचाव से कहाँ लगता है, ये बात तो हमारा अवलोकन होगा जब ही पता चलेगा, और अवलोकन होगा तो रास्ता निकलेगा। ध्यान ही नहीं रहता है तो बात अलग है। भले पर्याय दीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं, पर्याय में तो नुकसान करते हैं, नुकसान को नहीं देखेंगे तो फिर नुकसान को बंद कैसे करेंगे? नुकसान भी, अशांति भी पर्याय में होती है, नुकसान मैंने अशांति होती है, भय होता है, दुख होता है, ये तो सब पर्याय में होता है। अशुभ कम हो जाता है, सहज रूप से कम हो जाता है, क्योंकि रस नहीं आता ना उसको, संसार की प्रवृत्ति निष्फल दिखती है, असार दिखती है, क्या तो उसमें कोई सार नहीं है, आखिर में इसमें कोई सार नहीं है। अनंत भाव में हम अनंत प्रवृत्ति करके आए, क्या अभी फायदा है इसका बताइए, है कोई फायदा हमारे पास? कोई फायदा नहीं। हम कोई राज्य के राजा थे, अब इधर चले आए, अब वहां जाए तो क्या हालत होगी? अगर जाते स्मरण ज्ञान से हम बोले कि यहाँ का हम राजा थे, निकाल देंगे कि चलो भाई फालतू बात करने वाले कोई इधर का कोई काम नहीं है, क्या कहेंगे लोग। कितना भी ममत्व वहां था और जाति स्मरण से और भी कोई लगाव हो गया कि चलो वहां जाना है, उदय बदल गया है, किसी के साथ उदय तो रहा नहीं, उदय पूरा हो गया। तो वहां के परिवार के जो लोग हैं वो ही कहेंगे कि निकलो यहां से, यहां तुम्हारा कौन है, ऐसी बात हम तो सुनने को भी तैयार नहीं है, ये बात हो जाएगी। और जो भी कर्म बंधन किया उसका दुख को तो स्वयं को भोगना होगा। मैंने आत्महित की प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी जिसको कहते हैं, वहां तो सेकंड प्रायोरिटी इधर तो होती नहीं, फर्स्ट होने के बाद लास्ट ही होती है। या तो आत्महित को फर्स्ट प्रायोरिटी दियो या तो आत्महित को लास्ट प्रायोरिटी दियो, दो है, तीसरी है नहीं इसमें। जो भी ठीक समझो वैसा कर लो। कहने के लिए तो नहीं होना चाहिए। मन होता है तो कौन कौन रोकता है, कोई रोकने वाला तो कोई है नहीं अपने को। भीतर के परिणाम तो कोई जानते नहीं, जो भी संयोग में रहे हुए वो तो बाह्य प्रवृत्ति देखते हैं, परिणाम को तो कौन समझ सकते हैं और उसको रोक भी कौन सकते हैं। हाँ, बहुत सुंदर बात किया है। दृष्टि का विषयभूत जो आत्मा है वो तो पूर्ण शुद्ध स्वरूप है। दृष्टि का विषयभूत, सम्यक दर्शन का विषयभूत जो आत्म स्वरूप है वो तो शुद्धात्म तत्व है, परिपूर्ण शुद्ध है। उसका यथार्थ निर्णय जिसने किया, यथार्थ निर्णय किया, अनुभव तो बाद में करेगा, अनुभवांशे 751 का दूसरा बोल। तो उस निर्णय करने वाले के निर्णय के गर्भ में पूर्ण शुद्धि, मैंने सिद्ध पद आ गया। हाँ, पूर्ण शुद्ध तो सिद्ध पद, सिद्ध पूर्ण शुद्धि तो सिद्ध पद में ही होती है। तो सिद्ध पद का जन्म तो बाद में होगा, लेकिन गर्भ कल्याणक हो गया उसका, जन्म कल्याणक तो सिद्ध पद में होगा। ऐसी बात है, ये निर्णय का इतना महत्व है। हाँ, जो गुरुदेव ने 144 में बोला, स्पष्ट अनुभवांश कहो या राग का आंशिक अभाव करके कहो, वो फालतू बात नहीं है। उसको विज्ञान कहते हैं, उसको स्वरूप का प्रतिभास कहते हैं, स्वरूप लक्ष्य कहते हैं, उसको सुधारस भी कहते हैं। क्या सुधारस कहा है श्रीमद जी ने, वो आधार बदल दिया। हम जो विचार करते हैं, अभी जो वैचारिक निर्णय हम करते हैं, अभी वैचारिक भूमिका में हम जो वैचारिक निर्णय करते हैं उसमें अवलंबन राग का है, क्योंकि राग की प्रधानता है। और ये ज्ञान लक्षण से, ज्ञान सामान्य के आधार से ज्ञान स्वभाव का निर्णय किया, और राग की मुख्यता छूट गई ना, इसलिए मुख्यता छूट गई इसलिए अभाव कर दिया। हाँ, निर्णय का बहुत महत्व है। श्रीमद जी ने उसको तो एक संकेत बताया है कि ये एक संकेत है, संकेत का कारण होने से, कारण में कार्य का आरोप करके उसको संकेत सम्यक दर्शन बोल दिया है। तो फुगानी जी ने उसको पूर्ण शुद्धि भरी है ऐसा बोल दिया, सिद्धपद की बात ले लिया है। तो जरा बहुत जोर से बात करते थे, उन्होंने तो सीधा सिद्धपद लिया है वहां कि दृष्टि के निर्णय में पूर्ण शुद्धि भरी है, इसके गर्भ में सिद्धपद आ गया। वास्तव में उसी वक्त सिद्धपद दिख जाता है, क्या सिद्धपद की पहचान हो जाती है। हाँ, भणकार तो उसके पहले भी आ सकता है, वो तो मुमुक्षुता की भूमिका में आ सकता है, लेकिन अभी तो उसको दिख गया अपने आप में, साक्षात सिद्ध परमात्मा की मूर्ति उसका दर्शन हुआ उसमें। तो उनको फिर सिद्ध पद हुए बिना नहीं रहेगा, प्रकट हो जाएगा ये, क्योंकि जिसका गर्भ हुआ है उसका जन्म भाग होगा, सीधी बात तो यह है। नहीं, निर्णय मैंने निर्णय, दृष्टि का विषय भूत पदार्थ का निर्णय, तो उसको दृष्टि का निर्णय ऐसा बोल दिया। जैसे पानी का प्याला, पानी का प्याला नहीं, पानी भरा हुआ प्याला ऐसा। अतीन्द्रिय ज्ञान शुद्धोपयोग वाला नहीं हुआ, लेकिन ज्ञान सामान्य तो इंद्रिय ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान सामान्य जो लक्षण है वो कोई इंद्रिय ज्ञान है क्या? इंद्रिय ज्ञान तो विशेष होता है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान तो सबों को है, लेकिन वो ज्ञान का अंतरंग है और वहां वेदन है, अनुभव दृष्टि से उसको भिन्न रूप में देखने में नहीं आया। नहीं, वेदन तो वहां वेदन से ही पता चलता है, वो स्वसंवेदन जो निर्विकल्प दशा में होता है वो नहीं हुआ है। फिर भी वेदन का सर्वांश भाव तो हो ही नहीं सकता, ज्ञान में ज्ञान वेदन का त्याग होवे अभाव होवे ऐसा तो कभी बन ही नहीं सकता। तो जो है उससे तो पता चल, इसलिए अमृतचंद्राचार्य देव ने लक्ष लक्षण की चर्चा में स्वसंवेदन शब्द लिया है कि स्वसंवेदन से प्रसिद्धि होती है। लक्षण की प्रसिद्धि कैसे हुई कि स्वसंवेदन से हुई, वेदन से हुई इतना नहीं लिया, स्वसंवेदन शब्द लिया है। स्व शब्द इसलिए लिया है कि वहां अपना रूप ऐसा है, ऐसा स्वरूप से मालूम पड़ता है और वेदन से मालूम पड़ता है और अच्छी तरह मालूम पड़ता है, इसलिए संवेदन शब्द लिया है। वेदन वेदन सामान्य है पर संवेदन में वेदन विशेष है। वेदन विशेष है ऐसा है। अच्छी तरह संवेदन मैंने अच्छी तरह स्पष्टतया, मैंने निर्णय कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई अनुमान लगा दिया है कि मेरा आत्मा ऐसा है, ऐसी कोई धुंधली बात नहीं है उसमें। स्पष्ट जैसा आत्मा है वैसा सिद्धपद मूर्ति सारी की सारी दिखने में आती है। स्वरूप निश्चय એને બીજ્ઞાન કહો, એને સુધારસ કહો, સ્વરૂપ નિશ્ચય કહો, સ્વરૂપ લક્ષ્ય કહો, સ્વરૂપ કી પહેચાન કહો, સ્વરૂપ કા પ્રતિભાસ કહો, સબ પ્રકાર કે એક શબ્દ મેં એક હી બાત હૈ, અર્થ એક હી હૈ ઉસકા, એક હી ભાવ હૈ. પૂર્વાનુપૂર્વ એટલે એ અપૂર્વ પરિણામ હૈ. જિસકો બીજ્ઞાન કી ઉત્પત્તિ હુઈ ઉસકો સમ્યક દર્શન હોગા હી, વો અપૂર્વ હૈ. અગર પહેલે કભી હુઆ હોતા તો સમ્યક દર્શન ભી પહેલે હો જાતા, પર સમ્યક દર્શન પહેલે હોતા તો મુક્તિ ભી હો ગઈ હોતી. इसलिए ये अपूर्व है. और बाकी के परिणाम जो भी करते हैं धर्म की प्रवृत्ति का, वो तो पूर्वानुपूर्व आगे भी कर चुके हैं. अनंत बार, अनंत बार दीक्षा लिया, अनंत बार पंचमहाव्रत का पालन किया, अनंत बार ग्यारह अंग नव पूर्व की पढ़ाई किया, सब अनंत बार हो चुका है, सब पूर्वानुपूर्व. दोष को निकालने का उपाय, दुख लगे तो निकले. दोष और दुख तो एक सिक्का के दो बाजू है, अलग नहीं रहता कभी. दुख लगे तो निकले, दोष में दुख नहीं लगे तो निकले नहीं. तो दुख अनुभव का विषय है. दुख कोई विचार का विषय है या अनुभव का विषय है? सुख दुख तो अनुभव का विषय होता है. दुख का अनुभव हो गए तो जीव को दुख तो पसंद नहीं करता. कोई जीव दुख को तो चाहता नहीं. फिर रास्ता मिल जाएगा. दुख लगे तो रास्ता मिल जाएगा. रास्ता ढूंढे बिना जीव रह सकता नहीं. क्या रास्ता नहीं मिलता हो तो भी जीव रास्ता ढूंढे बिना रहेगा नहीं. सुगानी जी का तो प्रत्यक्ष दृष्टांत है कि ज्ञानी तो मिले नहीं थे, पूर्व संस्कार लेकर आए नहीं थे, दिगंबर होने से शास्त्र तो सब पढ़े थे और समझने के लिए पंडित को भी रख लिया था, एक पंडित को बुला लिया था कि उनको समझाओ तुम, लेकिन रास्ता भीतर में नहीं मिलता था. पंडित तो क्या करेगा, अर्थ समझाएगा कि ये गाथा का वो अर्थ होता है, इस शब्द का वो अर्थ होता है, इस वचन का वो अर्थ निकलता है. मार्ग तो अंदर में होता है. बहुत उलझन में आगे दुख बढ़ गया. क्या हुआ? टेंशन का भी दुख तो होता है ना. सबसे ज्यादा दुख तो टेंशन का होता है, मृत्यु से भी ज्यादा. टेंशन वाला जीव मृत्यु को पसंद करता है, टेंशन को नहीं. ये तो संसार में भी होता है. कोई जहर खाता है, कोई पानी में डूबता है, कोई रेल में पड़ता है, कोई जल जाता है, टेंशन से तो ये कर लेता है. वो टेंशन संसार की प्रतिकूलता का नहीं था, आत्मा नहीं मिलता था उसका था. तो उसमें तो कुदरत है, वो परिस्थिति को पैदा करती है. कुदरत इसके साथ बंधी हुई है. तो सोनगढ़ से आत्मधर्म किसी ने भेज दिया प्रचार के माध्यम से, जैसे हम प्रचार से भेजते हैं ना साहित्य, ऐसे भेज दिया वो किसी ने. तो पढ़ते ही उनको लगा, कह रहे कोई बात तो इधर है आत्म शांति की. क्या गंध आ गई उनको, समझ में नहीं बात आई कोई. लेकिन पानी की तृषा वाले को कोई ठंडी हवा आती हो तो लगता है कि वहां पानी होगा, जलाशय होगा, जलाशय में से हवा आती है. और 600 माइल की मुसाफरी कर दी उन्होंने उस जमाने में. अजमेर से सोनगढ़ भग करके आए, गुजराती भाषा नहीं जानते थे, सोनगढ़ में अपने परिचय वाले कोई नहीं थे, हिंदी भाषी प्रांत नहीं था गुजरात तो हिंदी भाषी प्रांत नहीं है, छोटे गांव में अनजाने क्षेत्र में अनजाने लोगों के बीच में आ गए और आते ही अपना काम कर लिया। सबसे बड़ी बात तो वो है, तृषा लेकर के आए थे तो पानी मिल गया और पी लिया, और हम लोगों को पानी मिलता है लेकिन तृषा नहीं है तो पीते नहीं है, पग धो देते हैं, पैर को धो देते हैं, ये बात होती है। वो चलता है ना भाई, हमको भाषा समझ में नहीं आती, ऐसी बात नहीं बनती वहां। भाव को पकड़ लेते हैं, क्या क्या सुना, ज्ञान जुदू छे अने राग जुदो छे, बस ये सुना वेद ज्ञान का विषय गुजराती में, बस भाव पकड़ लिया, बीज ज्ञान की प्राप्ति वहां कर ली, कहा सुनते सुनते ही। पर उसी दिन अनुभव कर लिया, तीन संकेत 24 घंटे में प्राप्त किया, गुरुदेव को पहचाना प्रवचन सुनते ही, पहला संकेत, स्वरूप को पहचाना सुनते सुनते ही, दूसरा संकेत, और रात्रि को अनुभव किया परमार्थ संकेत, तीसरा। काम तो होता है, मिनटों में काम होता है, होता है। दुख को पहचाना नहीं, जब कोई को पहचानते नहीं तो वेश बदल कर आएगा तो हम दुख में रह जाएंगे, और पहचान लेते तो कोई भी वेश में आ जाए, हम पहचान लेंगे कि तुम तो फलाना फलाना है, तो वेश बदलता है दुख, मंद कषाई भी दुख है, वो भी इसका दुख का ही वेश है, और क्या वेश है, दुख को पहचाना नहीं, दुख को नहीं पहचाना इसलिए सुख को भी नहीं पहचाना। अवलोकन परिचय, पहचान का प्रोसेस परिचय ही है और कुछ नहीं, किसी भी व्यक्ति का बिना परिचय पहचान होती है क्या, अरे किसी चीज की भी बिना परिचय पहचान होती है क्या, कपड़े की पहचान कपड़े के व्यापारी की होती है तो क्या, कैसे होती है, परिचय ज्यादा है उसको, जौहरी को हीरा की पहचान होती है क्यों, परिचय ज्यादा है, और आपस में एक दूसरे की पहचान कितनी, कि जितना परिचय ज्यादा उतनी पहचान थी, पहचान का तो कोई दूसरा प्रोसेस है ही नहीं, बिल्कुल साइंटिफिक है, जितना परिचय उतनी पहचान, हम परिचय नहीं करते, हमारे परिणामों का परिचय हम नहीं करते, इसलिए हमारे परिणाम में दुख क्या चीज है सुख क्या चीज है हम नहीं समझ सकते, ये तो मोस्ट प्रैक्टिकल बात है। प्रतीति मैंने यहाँ विश्वास, विश्वास विश्वास में क्या होता है कि जैसे हमको कहीं भी सुख लगता है, किसी को मिठाई खाने में सुख लगता है, समझे, दृष्टांत ले ले, तो उसको वास्तव में क्या हुआ है उसका थोड़ा हम एनालिसिस करें, पृथक्करण कर ले इस बात का, इस प्रसंग का, कि वास्तव में वहां सुख का विश्वास तो पहले से है, फिर खाते वक्त जो है वो सुख लगता है क्या? अनजाने पदार्थ में ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो जाने हुए हैं कि हमको ये चीज अच्छी लगती है, उसमें पहले से सुख का विश्वास है, फिर इस चीज का जब उदय आता है तो तीव्र रस से परिणाम चल जाता है। तो ऐसा मेरे आत्मा में मेरा अनंत सुख भरा है, मेरे आत्मा में ही मेरा अनंत अनंत सुख भरा है, बेहद सुख भरा है, और मेरा सुख किंचित मात्र किधर भी नहीं है, ऐसा एक विश्वास निर्णय के कारण पैदा होता है। अनुभवांश है, अनुभव में क्या है कि जो ज्ञान का अंश अनुभव गोचर हुआ है उस ज्ञान निराकुल स्वरूप है, ज्ञान में मात्र ज्ञान में कषाय का अभाव है, वेदन है, ज्ञान का ज्ञान वेदन है, हाँ वेदन है, वो ज्ञान सामान्य मा का वेदन में क्या वेदन में आया कि उसमें कषाय तो है नहीं, तो कषाय का अभाव मैंने आकुलता का अभाव, कषाय में आकुलता है अभेद रूप से, आकुल निराकुल अंश को वेदन में लिया, तो अनंत सुख उसमें भरा है, उसकी प्रतीति आ गई एक अंश में से। जैसे ये गुड़ खाते हैं, गुड़ खरीदने को जाते हैं ना, तो उसका तो 30 किलो का बड़ा ये रवा आता है, गुजराती में उसको रवा कहते हैं, ये कोल्हापुर का रवा गोड़ का, चखते कितने, सैंपल को चखते हैं, सैंपल को चक के निर्णय करते हैं कि पूरा जो है 30 किलो ऐसा ही है, बस वैसा ही सैंपल का अनुभव हुआ। अनुभव प्रकाश में क्या लिखा, इस ज्ञान वानगी को, वानगी मैंने सैंपल, पिछान करके अनंत संत अजर अमर हो गए, क्या लिखा, इस ज्ञान वानगी को पिछान करके अनंत संत है वो अजर अमर हो गए। तो यहां से सुख की पहचान होती है, उससे विश्वास आया, जो अनुभव से विश्वास आता है वो सुनी हुई बात से विश्वास नहीं आता। हम लोग सुनते हैं पढ़ते हैं लेकिन विश्वास कहां से आएगा, आत्मा में सुख भरा है और कहीं पुद्गल में सुख नहीं भरा है, उसका विश्वास कहां से आएगा, विश्वास कहां से लाएंगे, तो अनुभव अनुभवांश प्रतीति ऐसा लिया है, विश्वास खड़ा होना चाहिए। जिनवाणी हमको मिलती है तो ये तो जिनेंद्र भगवान के वचन है, और जिनेश्वर के वचन पर हमें विश्वास नहीं है, ये बात कितनी शर्मजनक है। हमारे लड़के की बात तो हम मान ले रहे, तो पड़ोसी के मानेंगे, हमारे कारोबार में दुकान में हम नौकर के मानेंगे या लड़के के मानेंगे, तो हमारा लड़का जो कहता है वो बात सही है। यहाँ तो हम लड़के के मानने को तैयार है, यहाँ जिनेश्वर के मानने को तैयार नहीं है। देखिए क्या हालत है, विश्वास कहां से आएगा, वो कोई लाया नहीं जाता। इसलिए कहते हैं कि अनुभव से तैयार हो, ये मार्ग अनुभव का है, कार्य पद्धति भी अनुभव की है, और अनुभव की कार्य पद्धति होने से अनुभव से विश्वास पैदा होता है। बिना अनुभव विश्वास पैदा ही नहीं होगा। सुन सुन करके भाई कितना भी सुनो विश्वास नहीं आएगा। किसका किसको विश्वास है? फिर अनुभव में दूसरी बात पड़ी है। अनुभव में हमको और जगह भी सुख का अनुभव होता है क्या? जहां सुख नहीं है, अरे सुख तो नहीं है, सुख की गंध भी वहां नहीं है, वहां हमको सुख का अनुभव होता है। देखिए केशवभाई, भूल दो तरह की होती है जीव की, एक समझदारी की और एक अनुभव की। क्या? तो समझ की भूल तो हम समझ से निकालते हैं, और समझ से निकालने में हमारे पास जो साधन है वो सत्पुरुष का संग है, सत्शास्त्र का न्याय है, युक्ति भी है, कितनी युक्ति तो अनुभव गोचर भी है। जैसे कि हम ये कहेंगे कि लड्डू में सुख नहीं है, क्यों? कि पहले लड्डू खाते वक्त तो थोड़ा सुख मालूम हुआ क्योंकि भूख लगी थी, दूसरा लड्डू में फिर रस नहीं आया, और तीसरा लड्डू में तो ना देना पड़ता है कि नहीं सुख नहीं लगता है, हमको खाना ही नहीं है। तो ये अनुभव की युक्ति हुई कि अगर वास्तव में सुख होता तो तीसरा लड्डू खाते वक्त तीन गुना सुख हो जाता, और दसवां लड्डू खाते वक्त दस गुना हो जाता। लेकिन सुख नहीं है वो अनुभव से वहां तो पता चल जाता है, फिर भी हमारा विश्वास नहीं छूटा है। दूसरी वक्त फिर वहां सुख का अभिप्राय तो चालू है, हमारा सुख का अभिप्राय तो बदला नहीं। ऐसा अनुभव होने पर भी हमारा अभिप्राय हमने नहीं बदला, तो ये अभिप्राय की जो भूल है वो पूरी भूल है, वो भूल रह जाती है। तो इसलिए हम युक्ति से, आगम से, न्याय से, तर्क से, अनुमान से हम निर्णय करते हैं, और हमारी समझ साफ हो जाती है कि सुख आत्मा में है और जगह नहीं है। कोई भी पूछेंगे तो हम कहेंगे कि सुख तो आत्मा में है, लेकिन अनुभव का अनुभव की भूल है कि अनुभव के काल में अच्छा लगता है, सुख लगता है, ये भूल तो अनुभव से निकलेगी। अनुभव की भूल अनुभव से निकलेगी, और समझ की भूल गैर समझ की भूल सही समझ से निकलेगी। भूल दो प्रकार की होती है, दोनों ज्ञान के पर्याय है। ऐसा दोनों भूल को निकालनी है, तो एक भूल तो हम निकाल सकते हैं गुरुदेव की कृपा से। उतने न्याय अपने को समझने के मिला है, उतने ग्रंथ मिले हैं, उतनी बातें मिली हैं कि हम समझ सकते हैं कि नहीं सुख आत्मा में है और जगह नहीं है। लेकिन और जगह सुख अनुभव करते हैं, इस भूल का क्या? ये तो अनुभव बिना नहीं निकलेगी। तो आत्मा में सुख है ऐसा अनुभव होगा जब ही निकलेगी ये भूल। तो मोक्षार्थी पहले होना चाहिए, सबसे पहले ये बात है, पूर्णता के लक्ष्य से ही शुरुआत करो। शुरुआत शब्द मैंने पहला, ये तो गुरुदेव ने फाइनल कर दिया है, उसमें कोई हेरफेर हमें करना नहीं है, क्योंकि तो अनुभव से बात निकली है। पहले तो मोक्षार्थी होना ही है, फिर सब बात आगे ठीक हो जाएगी। प्रयत्न में सही प्रयत्न चलेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बुद्धिपूर्वक हम क्रम विपर्यास चाहते हैं, बुद्धिगम्य बुद्धिपूर्वक हम कर्म की विपरीतता को ग्रहण करते हैं। ठीक है, कुछ भी कहो, मनमानी को, ग्रहित मिथ्यात को, अपने तरीके से चलना चाहते हैं। ये तो पदार्थ विज्ञान है, हलवा तो जैसे बनता है वैसे ही बनेगा, घी में लोड आटे को सेकना पड़ेगा, पहले पानी डाल दो तो गुड़ का पानी, शक्कर का पानी पहले डाल दो तो वो क्रम नहीं चल सकता, हलवा नहीं बन सकता। अपने शेरों कहिए थे, पहले घी में आटा को सेकना पड़ेगा, क्रम तो वही है इसका, है तो तीन चीज, शक्कर, आटा और पानी, लेकिन इसका क्रम है कि पहले सेको फिर शक्कर का पानी डालो तो हलवा बनेगा, पहले पानी डाल दो तो हलवा नहीं बनेगा, हलवा तो नहीं बनेगा, तीनों चीज बिगड़ेगी, नुकसान तो तीनों चीज का हो जाएगा, खाने लायक चीज नहीं बनेगी। हाँ, अवलोकन पद्धति यही अनुभव पद्धति है, अवलोकन पद्धति कहो या अनुभव पद्धति कहो, पद्धति तो नाम अलग अलग है। अनुभव की क्रिया को अनुभूति कहते हैं, ज्ञान की क्रिया को ज्ञप्ति कहते हैं। क्या? वर्तमान चालू क्रिया, सूचक ये शब्द रचना है। परिणाम की चालू क्रिया को परिणति कहते हैं, अनुभव की चालू क्रिया को अनुभूति कहते हैं, ज्ञान की चालू क्रिया को ज्ञप्ति कहते हैं। ऐसे एक पद्धति है वो शब्द व्याकरण का विषय है। हाँ, क्या अर्थ होता है, लेकिन वो क्रिया सूचक है, ज्ञप्ति, परिणति, अनुभूति, ये क्रिया सूचक है और ये नाम सूचक है। व्याकरण में नाम और क्रिया का पद अलग अलग है, एक क्रिया का पद है, एक नाम का पद है, ऐसा। उसमें शक्ति रूप षटकारक है, कर्ता शक्ति है, क्रिया शक्ति है, वो भी कुटस्थ है, अपरिणाम वो शक्ति रूप है, और जो परिणाम में है वो व्यक्ति रूप है, इतना फर्क है, वही गुण का परिणाम है व्यक्ति रूप, वो परिणाम के षटकारक है। ग्रहित बधाने माटे तो ना कहेवाय, पण विचार करवा जेवो विषय खरो, विचार करवा जेवो विषय खरो। एक ऐसा भी नियम है जो दीपचंद जी ने अनुभव प्रकाश में लिखा है कि अग्रहित मिथ्यात्व में जीव है और वो अग्रहित मिथ्यात्व को अभाव करके, नाश करके सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं करता है तो लंबे काल होने से वो अग्रहित साधक होता है और ग्रहित मिथ्यात्व साध्य हो जाता है। साध्य साधक का बोल दिया है, अग्रहित को साधन कहा, ग्रहित उसका साध्य बोल दिया, ऐसा हो जाता है। अग्रहित मिथ्यात्म हमारे देवगुरु शास्त्र सही है, हमारा शास्त्र ज्ञान ठीक है, इसलिए हमारा अभी तो ग्रहित मिथ्यात्म नहीं है, ऐसे ग्रहित से तो हम छूट गए हैं, पहले स्थानक वासी थे, अब गुरुदेव की कृपा से हम इधर आ गए, तो इसमें आ गए तो रहना नहीं है, इसमें आगे बढ़कर के अग्रहित मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक स्मृति प्राप्ति कर लेनी चाहिए, वरना अग्रहित मिथ्यात्व साधक हो जाएगा, गृहित मिथ्यात्व साध्य हो जाएगा, कैसे भी ये बन जाएगा। ऐसी एक ये मोहनी प्रकृति है, उसका स्वभाव ही तीव्र मंद रहने का है। किसी का कषाय जो है चारित्र मोह एक सा रहता है क्या? कभी तीव्र हो जाता है, कभी मंद हो जाता है, कभी तीव्र हो जाता है। ऐसे दर्शन मोह का भी ऐसा स्वभाव है, मोहनी की प्रकृति ऐसी है। उसको शास्त्र में उपमा दी है ताव की, बुखार की। तो बुखार जब मापो, जब जब मापो अलग अलग रीडिंग आएगा उसका। ताव तो ताव है, अभी 99 है, 101 है, कभी 103 है, तो कभी 100 है। जब भी थर्मोमीटर लगाओ नया रीडिंग आएगा। ऐसा ये भी तीव्र मंद तीव्र मंद तीव्र मंद हुआ करता है। जब मंद होता है तो नाश करने का प्रयत्न कर लेना चाहिए, तीव्रता में ये हो नहीं सकता। तो जब कषाय मंद हो, जब दर्शन मंद हो, तो उसका अभाव होवे, ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए। જોખમ છે, અમે ત્યાં રોજ સ્વાધ્યાયમાં એમ કહીએ છીએ ભાવનગરમાં કે મુમુક્ષુને જૂના થવામાં જોખમ છે। આ અમારા જૂના મુમુક્ષુ છે એમ કોઈ કે ને તો લાંછન લાગવું જોઈએ। શું કરું ભાઈ? આબરૂનો વિષય નથી, જૂના મુમુક્ષુ છે એ આબરૂનો વિષય નથી। અમારે ત્યાં એમ ચાલે તો સ્વાધ્યાયમાં એ નયા મુમુક્ષ હોય તો ઠીક હે, ચલો ભાવના સે આયે હૈ શાયદ કામ કર લેંગે। પણ આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે, પાકે ઘડે કાંઠા ચડે નહીં। રીઢો એવો થઈ જાય કે પછી એમાં કઈ ફેરફાર થાય નહીં। હો, એટલે નવો નવો પ્રવેશ કરે ને ત્યારે જો જોર કરે તો કામ થઈ જાય, બાકી જૂનો થઈ ગયો એ પછી વાત જોખમી છે, એ ગ્રહિત મિથ્યાત્મા આવી જશે। જૂના થાય એમાં જોખમ છે, પુરાણા નહીં હોના, જ્યાં તક નયે નહીં હે કામ કર લેના બસ। પુરાણા હો ગયા તો ઉસમેં એક ગ્રહિત મિથ્યાત્વ કા જોખમ હૈ, અગ્રહિત મેં સે ગ્રહિત મેં ચલા જાયેગા। મિથ્યાત્વ તીવ્ર હો જાતા હૈ જબ એસા હોતા હૈ, ઉસકો તો પુરુષાર્થ જ્યાદા હી કરના પડે, क्योंकि परिणाम एक चाल है। क्या है परिणाम? एक चाल है और चलने की दो ही दिशा है, एक अंतर्मुख की और एक बहिर्मुख की। अब हम जितना बहिर्मुख चले हैं उतना दूर गए अंतर्मुखता से, तो वापस उतना ही आना पड़ेगा, जितना दूर गए उतना वापस आने पड़ेगा। इसलिए दूर नहीं जाना है हमें। सुगानी जी ने लिखा कि नहीं लिखा, द्रविलिंगी ने जितना पुरुषार्थ किया है इससे ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा उसको सम्यक दर्शन पाने में। जितना पुरुषार्थ उसने दीक्षा लेने में, महाव्रत पालन करने में जो किया, इससे ज्यादा पुरुषार्थ उसको सम्यक दर्शन करने में लगेगा। क्यों? क्योंकि उतना तेजी से बाहर गया, उसका वीर्य का क्षोभ ज्यादा है, तो वह खर्च कर दिया उन्होंने शुभ भाव में। इससे ज्यादा ज्यादा जोर करे तब तो वो पीछे वापिस आवे ना, ऐसी बात है। तो यहाँ तो गिनती का प्रकार ही अलग है। समाज में तो ये कहेंगे कि हमारा ये पुराने मुमुक्ष है, तो उनको थोड़ा रस चढ़ जाता है। क्या? हाँ, हम तो दूसरे से तो पुराने हैं ना, हमारा अधिकार ज्यादा है, क्योंकि हम तो जूने हैं, पुराने हैं, हमारे तो पिताजी भी मानते थे क्या। તો તમારે ઠોઠ ઠોઠ નિસળ્યા ને શું કે વારંવાર ના પાસતા તીવ્ર સાધારણ ને વધારે ગ્રહિત વધારે તીવ્ર એ તો ભૂલે ચૂકે ભી નહીં હોના ચાહીએ જાગૃતિ મેં નહીં હોના ચાહીએ સ્વપ્ન મેં ભી નહીં હોના ચાહીએ ક્યું જ્ઞાની જો અનુભવ મેં આયે હૈ તો બિન અનુભવી કા તો ઉસ વિષય મેં અધિકારી નહીં હૈ બિન અનુભવી કા તો ઇસ વિષય મેં અધિકારી નહીં હૈ એક ડોક્ટર કો હમ બુલાતે હૈ જો સ્પેશલાઇઝ હોતે હૈ ભાઈ હાર્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ હૈ અગર વો એક્ઝામિન કરકે બોડી કો તલાશ કરકે વો કાર્ડિયોગ્રામ વગેરે નિકાલ કરકે ફિર વો દવાઈ લિખતા હૈ તો ઉસમે કોઈ એસા દર્દી એસા કહેગા કે સાહેબ યે દવાઈ આપ મત લિખો વો દવાઈ લિખો ક્યા કેસા કેસી બાત હોગી યે દર્દી ડોક્ટર કો યે બોલેગા કે વો દવાઈ આપ નહીં લિખના વો દવાઈ લિખના ડોક્ટર ક્યા કહેગા કે તુમ્હારા કોઈ અધિકાર નહીં હૈ યે મેરા અધિકાર હૈ યે મેરી સમજ કા વિષય મેરા યે સબ્જેક્ટ મેરા હૈ તુમ્હારા સબ્જેક્ટ હી નહીં હૈ તુમ કૌન અભિપ્રાય દેને વાલે જ્ઞાની તો એક્સપર્ટ હૈ અનુભવ સે વો એક્સપર્ટ હુએ હૈ અજ્ઞાની કા ક્યા અધિકાર હૈ ઇસ વિષય મેં કોઈ અધિકાર હી નહીં બિલકુલ કમ નહીં જાણતે કેવલ જ્ઞાન કે લબ્ધિ પેદા હુઈ હૈ ઉસકો ક્યા કમ જાણતે હૈ કમ ક્યા જાણતે હૈ કેવલ જ્ઞાન કે લબ્ધિ લેકર બેઠે હૈ વો કુછ કમ નહીં જાણતે હા નહીં દોનો મેં કોઈ ફરક નહીં હૈ અનંત જ્ઞાનીઓ કા એક હી અભિપ્રાય હોતા હૈ ચાહે મુનિ હો ચાહે સર્વજ્ઞ હો ચાહે સત્પુરુષ હો એટલે તો એની વાણી કો જીનવાણી કહેતે હૈ સત્પુરુષ કી વાણી કો જીનવાણી ક્યો કહેતે હૈ ક્યા કારણ હૈ બતાઈએ કે જીનત્વ પ્રાપ્ત કિયા હૈ ક્યા જીનત્વ પ્રાપ્ત કિયા હૈ ઇસલિયે વો જીનવાણી હૈ કરણાનુયોગ મેં ગોમટ સાર મેં યે બાત લિખી હૈ કિસને લિખી હૈ ટોડરમલજી સાહેબ જો સમ્ય જ્ઞાન ચંદ્રિકા જીને લિખી ટીકા ગોમટ સાર કે ઉસને વો બાત લિખી હૈ કરણાનુયોગ મેં યે વિષય ચલા હૈ